चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च विकाशिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। आज भगवान की कृपा है कि जनकपुरी में हम लोग एकत्रित होकर कुछ भगवान की कथाओं को सुनने का वर्णन करने का सौभाग्य लाभ कर रहे हैं। हम क्या हैं, हम कौन हैं, इस जगत में कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कब जाना है और हमारा क्या कर्तव्य है इस जगत में। मेरे को तो काफ़ी जगह है, आप लोग थोड़ा और आगे चलो, काफ़ी जगह कर्तव्य है। इस चीज़ को या ऐसे प्रश्न जिनके जीवन में नहीं उठते हैं उनको पशु कहा गया। पशुओं में भी सबसे बदतर खर माने गधा, उनको गधा कहा गया। जो इतना नहीं विचार करते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, हमारा क्या कर्तव्य है। अभी हम जिस रूप में हैं वही मैं हूँ या कुछ और हैं, अभी जो हम कुछ कर रहे हैं वही तक हमारा कर्तव्य शेष है या कुछ और कर्तव्य है, यह प्रश्न जब जिसके मनुष्य के हृदय में आते हैं वो तो मनुष्य हैं, अन्यथा पशुओं से कोई उनका वैशिष्ट्य नहीं है। आज हम घर में एक नौकर रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ऊपर से ऐसा वो दिखता है जैसे ये विश्वास से जुड़ गए और 10 दिन के बाद में देखते हैं कि ये तो हमसे छल कर रहा है, वो चुराता है या कुछ करता है, 10 दिन के बाद में उसको हम निकाल देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, सब कुछ विश्वास करते हैं, 10 दिन के बाद में ऐसा पता चलता है कि ये हमारे साथ में धोखा किया। इस तरह से हम आजकल देखते हैं चारों तरफ यही चीजें, किस पर हम विश्वास करें और अपने जीवन का हम कैसे गठन करें। यदि ये प्रश्नों का उत्तर भी हम खोजने की चेष्टा करते हैं तो ये जरा कठिन है कि किन पर बात पर विश्वास करके हम आगे बढ़ें। विशेष करके जो जीवन में आचरण करते हैं और जिनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, तमन्ना नहीं है, जो संपूर्ण रूप से अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसको हमसे कुछ लेना नहीं है, देना ही उसको, यदि सचमुच में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको हमसे कुछ नहीं लेना है बल्कि वही हमको दे और संपूर्ण रूप में अर्थ में, बुद्धि में, प्रतिष्ठा में, सब चीज में, अपने आप में वो पूर्ण हो, जिसको किसी प्रकार का दूसरे से स्वार्थ नहीं है, ऐसा यदि खोजा जाए तो हम देखेंगे राष्ट्र में, अभी भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। खैर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर में तो लोगों का विश्वास ही घट गया, राष्ट्रपति के ऊपर में भी ऐसा नहीं। वो पैसे लेकर के, महीने लेकर के तब काम करते हैं, वो भी पूर्ण नहीं। टाटा बिरला इत्यादि को कहा जाए तो उनकी भी आय सीमित ही है, पूर्ण नहीं है। इस तरह से विश्व भर में जब देखते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको कोई स्वार्थ नहीं है और अपने आप में संपूर्ण रूप से पूर्ण हो, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, विद्या में, सब विषय अर्थ में, जब सब प्रकार से विचार करते हैं, देखते हैं तो 5000 वर्ष पहले हमको जाना पड़ता है। कृष्ण सब विषय में पूर्ण है, अर्जुन से कुछ उनको लेना नहीं है, लेना है उनके रथ पर बैठ करके सारथी का काम करते हैं, पैसे के लिए किया नहीं किया। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया कुछ लेने की नियत से? संसार में ऐसा कोई है जो कृष्ण के समान, यदि एक राजनीतिक पुरुष भी मान लें तो बुद्धि का था नहीं है कृष्ण का? सभी लोग कृष्ण के पास में जाते हैं बुद्धि के लिए। बल में देखेंगे सारा विश्व एक तरफ में और कृष्ण अकेले रहे तभी सबको परास्त कर सकते हैं। कृष्ण जो चाहे वो कुछ कर देंगे, इसलिए कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको भगवान मांगिए या एक व्यक्ति मानिए या कुछ भी मानिए, जिनके बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं। अर्जुन ने भी विश्वास किया और जगत के तब से सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं। कृष्ण जो कुछ कहेंगे हमारे कल्याण के लिए कहेंगे, उनमें उनका एक पैसे का रत्ती भर भी कोई स्वार्थ नहीं है, उनसे कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है, अपने में संपूर्ण विषय में वो पूर्ण है। आदमी ऐसा ही एक आश्रय खोजता है, ढूंढता है। यदि ऐसा बात कोई व्यक्ति मिल जाए, बुद्धि में भी हमसे लाख गुना अच्छा है, बल में भी, यदि अर्थ की बल की जरूरत पड़े अर्थ की तो उसे ले भी सकते हैं, बुद्धि की जरूरत है तो उसे लेंगे, विद्या की जरूरत है उसे लेंगे, कोई भी चीज़ की जरूरत होगी तो हम उसे ले सकें। एक ऐसे आश्रय की जरूरत है। अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचा, उसका चित्त डमाडोल हो गया, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, युद्ध की विभीषिका देखकर डर गया। इसे तो भारतवर्ष के लोग और विश्व के लोग चौपट हो जाएंगे युद्ध में। एक तरफ में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि बड़े बड़े महारथी विश्व के सभी, उस समय जगत ही दो खेमे में बट गया, बल्कि महायुद्ध में दो खेमे में संपूर्ण रूप से नहीं बटा, बहुत से राष्ट्र रह गए जो तटस्थ रह गए, किंतु उस समय में सारा विश्व दो खेमे में बट गया, एक कौनों की तरफ में एक कौन। देखा जाए एक तरफ में हमारे गुरुजन हैं, हमारे भाई हैं, और दूसरी तरफ में भी वही हैं, दुर्योधन उनका भाई है, कर्ण भी अपने माँ से पैदा हुआ है, भीष्म पितामह उसके पितामह मातामह हैं। क्या करूँ, युद्ध करूँ ना करूँ, उनके दिमाग में नहीं आया कुछ, कृष्ण का आश्रय कर दिया। केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, ये संसार में रहते समय बचपन से लेकर के जन्म से लेकर मरण तक ये सारा युद्ध है, ये संग्राम भूमि है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने सहारा मांग लिया। मेरी बात मानेगा, कजे शिष्य शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि अकल कुछ काम नहीं करती, इस जगत में, इस जीवन संग्राम में कैसे सुखी और शांति हमको मिल सकती है, मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं ऐसी स्थिति में पड़ गया हूं जैसे कोई अथाह अनंत सागर हो पानी कितना है कोई था नहीं, आर पार नहीं, किनारा नहीं, छोर नहीं, और उसी में गिर गया हूँ, और हमें बचाने के लिए कोई नौका कुछ नहीं है। अभी जो कुछ हमारे लिए बचाने के लिए है वो कैसे है, जैसे स्ट्रॉ, सूखा हुआ तिनका, तिनके का गुच्छ, जहाँ पकड़ते हैं तो वो भी डूब जाता है। ऐसे ये संसार के मनुष्यों की, लोगों की बुद्धि है, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, विषम पिता में भी विश्वास नहीं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य उन पर भी विश्वास नहीं, उन्होंने एक पक्ष ले लिया, किसी पर विश्वास नहीं। अब मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, आप जैसा कहेंगे करिष्ये तौ वचनम, आपका मैं जो कुछ कहेंगे। इसी तरह से इस संसार में जब हम आए तो कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, और हमसे सब प्रकार से वो उन्नत विचार वाला हो, बुद्धिमान हो, जिसका जीवन सुखमय और शांतिमय हो रहा हो। किसी को मानो, कृष्ण को मान लो, कृष्ण को ही गुरु मान लो, अब उसको लेकर के हमको चलना चाहिए। जीवन निर्वाह करने के लिए कृष्ण की जो उपदेश है उसको मानने में एतराज नहीं करना चाहिए। कैसा हमारा जीवन में व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, ये सबको कृष्ण से शिक्षा करनी चाहिए, दूसरों पर नहीं। कृष्ण ने जो कुछ कहा है गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है, वेद उनके निश्वास से निकले हैं, इसलिए सभी एक ही चीज हैं। वेद, गीता भी एक उपनिषद है, वेद ही है, बल्कि उस वेद से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने मुख से कहा। इसलिए गीता में जो बातें हैं उसको हम लोग अपने जीवन में, यदि हम लोग रोज रोज दैनिक जीवन में हम लोग व्यवहार करें, हम लोग सुखी और शांति हो सकते हैं, और भविष्य के लिए हम लोग, हमारे जितने प्रश्न भी किया हमने वो सबके उत्तर भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे, और हम अपने जीवन में, छोटे से जीवन में भी हम सुखी और शांति हो सकते हैं। पहले ये समझना चाहिए, अभी ये एक घंटा का समय मेरे लिए दो, एक घंटा का समय कोई भी बातचीत पत्र वो हमको दे दो आध घंटे के लिए, उसको समझने की चेष्टा करें, यदि अच्छा लगे तो अपने अपनाएं, और अच्छा ना लगे तो अपनी बात में अपने साथ ले जाऊंगा, मेरे बहुत से खरीदार इधर उधर उनको दे दूंगा, और अच्छा लगी उसे ग्रहण करने की। कठिन चीजें नहीं है, बहुत सरल सहज चीजें हैं, बस समझने की थोड़ी सी बात है। पहले इस चीज को समझा जाए कि मैं कौन हूं। कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, पहले इस चीज को खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें। इस शरीर में आत्मा मैं हूं, और ये कपड़ा है, और शरीर से किया हुआ और इस मन से किया हुआ जितने भी कार्य जगत में हैं, और इसके द्वारा जितने भी चीजों को हम संग्रह करते हैं, वो कोई भी एक तीन का भी लेकर के नहीं जाना है, ईश्वर को अच्छी तरह से समझ रखिए, कुछ भी नहीं जाए। ये कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं उनके बातों को पियोन हो करके जो चिट्ठी बांटता है मैं वैसे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मनी ऑर्डर आया है, पियोन जिसके नाम का है उसको बुला रहा है और उनको वो पैसा देता है, उसका एक भी पैसा नहीं, ऐसे समझिए कृष्ण के संदेश को मैं आप लोगों को सुन। तो ये यह शरीर मैं नहीं हूँ, पहले इस चीज को समझ लेना चाहिए। और संसार का कोई भी द्रव्य, कोई भी अपना कहा जाने वाला, मैं और मेरा कोई भी नहीं जाएगा, जो इस शरीर से संबंधित है कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए इनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, गीता के अनुसार में हमको लेकर के चलना है। दूसरी बात, हम कब चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इसमें जो है वो कहते हैं कृष्ण, ये तुम है ममई वांसो जीव लोके जीव पूता, तुम मेरा अंश है, तुम बार बार जन्म लेता है, हम भी लेते हैं, तुम भूल जाता है क्योंकि तुम जीव है और मैं नहीं कभी भूलता। इसी तत्व को हमने आज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को बतलाया था, तुमको भी बहुत बार बतलाया क्योंकि तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता, क्यों, मैं परमात्मा। इसलिए हमको परमात्मा समझो, ये समस्त विश्व को रेगुलेट करने वाला मैं हूं, हमसे बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं है। राम है, परशुराम है, वामन है, जितने भी अवतार हैं, मैं ही परतत्व हूं, सबका आदि हूं, मुझसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है, वो सब हमारे अंदर में है। देवता लोग जिनको जगत के बहुत से लोग पूजा करते हैं, वो हमारे अंश भी नहीं है, वो क्या है, साधारण जीव हैं। उनको हमने कुछ शक्ति दे दी है जगत चक्र को चलाने के लिए, बस इतना ही। जैसे चौकीदार एक साधारण मनुष्य है, किंतु गवर्नमेंट का लास्ट फ्रैक्शन है, उसकी बात गवर्नमेंट में सुनी जाएगी। मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा है, उसको मान लिया जाएगा, चौकीदार है ना। इसी तरह से उसमें कुछ गवर्नमेंट का पावर उसमें चला जाता है, ऐसे देवता लोग ये पावर है, भगवान के अंश नहीं है। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं उनको जो फल मिलता है वो कृष्ण ही देते हैं, मैं ही देता हूं। देवताओं में ये शक्ति नहीं है कि किसी की भी इच्छा को पूर्ण कर सकें, इस चीज को समझना चाहिए। इच्छा पूर्ण करने वाले केवल कृष्ण ही हैं, वो चाहे देवताओं के माध्यम से चाहे भगवत तत्वों के माध्यम से पूरा करने वाले वही हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। जब तक अंश में अंशी में वो नहीं मिलेगा, उसको प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक वो जीवन जन्मांतर तक ऐसे ही घूमता रहेगा, कभी मनुष्य होगा। बड़े सौभाग्य से हम लोग मनुष्य हुए। सुअर में भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर में आत्मा है, एक जातीय है, एक नहीं, वो अपने कर्म के अनुसार में वो सुअर बना हुआ है, सुअर ही बना हुआ है। कोई दैत्य बने हैं, कोई दात, कोई देवता बने हैं, कोई तरह तरह के जोनियों में घूम रहे हैं, भगवान से विजुक्त हो चुके हैं, भगवान को उन्होंने विस्मरण कर दिया है। इसलिए यदि हमको सुख और शांति पाना है तो कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य तू पुनः जन्म न विद्यते, जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम, जहां से मनुष्य चला जाता है हमारी पूजा करके हमारी सेवा करके, फिर वहां से लौटना नहीं। इसलिए गीता में जीवन चलाने के लिए जो जो बातें कही गई हैं उसको हम लोगों को मान करके चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। कहते हैं देखो तीन तरह की चीजें होती हैं, खूब ध्यान से सुनो और ग्रहण करने की चेष्टा करना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। भोजन में भी राजसिक, तामसिक और सात्विक चीजें हैं, विचारों में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, यहां तक कि मनुष्यत्व में भी तीन चीजें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फलों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, सभी चीजों में ये चीजें हैं। जो तामसिक लोग होते हैं वो प्राय असुर श्रेणी के होते हैं और उनको आसुरिक वस्तु में ही अच्छी लगती है। जैसे रावण को ले लीजिए, रावण का खान पान क्या है, रामचंद्र जी का खान पान क्या है, जैसे जो खाएगा आहार वैसे उसकी बुद्धि होगी। रावण के घर में मंदोदरी थी, रावण तो शराब, अंडे, गोश्त ये सब ग्रहण करता था, तामसिक आसुरिक चीज मंदोदरी नहीं करती थी, वही इसकी एक विशेषता थी, विभीषण नहीं करते थे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए सात्विक बातों विचारों को और सात्विक पदार्थों को सात्विक भावनाओं को ग्रहण करना चाहिए। वो सुखी हो गए, अन्यथा इन विचारों को समझ भी नहीं सकेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि कृष्ण को बात को समझने के लिए, अपने जीवन को शांतिमय और सुखमय बनाने के लिए आहार पर सबसे पहले कंट्रोल किया जाए, तामसिक वस्तुओं का व्यवहार न किया जाए। यह कृष्ण ही बतला रहे हैं। विशेष करके जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। अंडा भी जीव है, गोश्त किसी को मार करके आता है। अभी कल ही कहीं पेपर में देखा पश्चात देश में कहीं कितना करोड़ टन गाय का मांस जो काटा गया था उसको बंद कर दिया, मत खाओ,
समुद्र में फेंकवा दिया,
समुद्र में फेंकवा दिया,
सब लोग बीमार।
अब समझ रहे हैं, और हमारे ऋषि मुनि आज से कोटि कोटि हजारों वर्ष पहले ये समझ चुके। इसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, रोग होते हैं और दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए पहली चीज ये है, जैसा आप द्रव्य भोजन करेंगे, आहार करेंगे, वैसे ही बुद्धि होगी। बकरी का मांस खाने वाला, बकरे का मांस खाने वाला, वो बकरे के जैसे बुद्धि होगी। और इसीलिए शंकर जी ने प्रजापति को मार करके उसको बकरे का मुंड दे दिया, ये भागवत में ऐसा लिखा है। इसलिए आहार शुद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात, गीता में कहते हैं जपन्न देवता जजन्ते मां श्रद्धयान्वित ते अपि माम एव कंतेव
जजन्ति
अवधि पूर्वक। कहते हैं कि जो लोग दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो पराक्रांत रूप से मेरी ही पूजा होती है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो कोई वस्तु है नहीं, किंतु वह पूजा का फल भी मैं ही देता हूँ। किंतु भाई वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, अविधि पूर्वक हो जाता है, ऐसे नाक छूना है तो वो ऐसे हो जाता है, विधि पूर्वक नहीं। यदि कोई व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम प्रजा, कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का छोड़ करके मेरे शरणागत यदि हो जाओ तो मैं सब प्रकार से तुम्हें उन पापों से छुटकारा कर दूंगा। तुम मत सोच करो, मां सूच सोच मत करो। एक भगवत भक्त के लिए कहते हैं जो हमारा आश्रय ग्रहण कर लेता है वो हमको पाता है, और हमारी जितनी गुण है उनमें आते हैं। जो आदमी जिसका आश्रय ग्रहण करता है उसके गुण उस व्यक्ति में आते हैं। जो लोग मान लिया किसी देवता की उपासना करते हैं, किताब में करते हैं, देवव्रता जानति देवव्रतानि भूतानि जानति भूत त्यज्या मज्जाजिनो अपि माम, क्या है इसमें,
जानति देवव्रता
जान देवव्रता देवा
पितृन जानति पितृव्रता,
आप पितृन जानति पितृव्रता, देवताओं की उपासना जो करते हैं वो उन उन देवताओं को प्राप्त करते हैं, और देवता के साथ में समय आने पर फिर वहां से गिर पड़ते हैं, फिर इसी जगत में अपने भोगों को प्राप्त करते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोग को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजा करने वाले क्या होते हैं, मुझे प्राप्त, और कभी वो गिरते नहीं है, कभी उनका विनाश नहीं है। इसलिए कहते हैं हमारी उपासना ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि भगवान का उपासना करता है तो उस पर शनिश्चय भी ठीक है, ये झूठ बात नहीं है। शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, सूर्य है, चंद्र है, ये ग्रह हैं, और उनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। किंतु यदि भगवान का आश्रय ले लिया चक्र सुदर्शन के डर से, और शनि उस भक्त के पास में नहीं आता, आएगा। उदाहरण क्या है, एक महापापी दुराचारी व्यक्ति जिसका नाम अजामिल था, जगत का ऐसा कोई पाप था नहीं था जो उसने नहीं किया, किंतु मरते समय में किसी प्रकार से अपने बेटे के लिए उसने नारायण नाम पुकार दिया। वहां पर जम के दूत आए उसको पकड़ने के लिए, किंतु विष्णु के दूत आकर के उसे मना कर दिया और उसे युद्ध करा करके उसे परास्त करके उसको हटा दिया, नहीं आ सके। प्रहलाद महाराज जी थे हिरण्यकश्यपु, जो समस्त देवताओं को परास्त कर सका था। प्रहलाद महाराज जो छोटे 5 वर्ष के बच्चे थे उनको नहीं मार सका, 20 भी काम नहीं किया, आग भी काम ना कर सकी, सांप भी उस पर नहीं कुछ काम कर सके, जम के दूध ही नहीं काम कर सकते हैं तो और लोगों की तो बात क्या। इसलिए निर्भय होकर के कृष्ण का शरण ले लेना चाहिए, और यदि नहीं किया जाएगा तो ये देवता लोग का शरण लिया जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। मथुरा में बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषी लोग हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि देखते हैं, वो पत्थर देते हैं, क्या क्या करते हैं और बतलाते हैं जे तुम ऐसा करो वैसा करो, किनको उनकी कमजोरी का लाभ उठाते हैं, कुछ जानते फानते नहीं है, ज्योतिषी का कुछ जानते हैं थोड़ा सा। वो हमारे पास में आते हैं जब विपत्ति में पड़ते हैं जी महाराज जी अब मैं क्या करूं, और दूसरों के लिए बहुत ज्योतिष सिद्ध ज्योतिषी बने हैं, बड़े बड़े सिद्ध शनि और क्या क्या ये सब करते हैं। कुछ नहीं, एक भगवान का नाम यदि लिया जाए उस पर कोई भी ग्रह नक्षत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष लोग क्या कहते हैं, सर्व धर्मान प्रत्यजमान एकम शरण। देखो एक उदाहरण के साथ में, भागवत में सूत्र, गीता में सूत्र है और भागवत में उसकी व्याख्या है। अब ये जो बतलाया ना, देवता लोग को भजन करने वाले देवता लोग हो जाते और शांति सुख नहीं मिलता, और देवता लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यदि भगवान का आश्रय ले लिया जाए। कृष्ण 5 वर्ष के अभी हुए थे, अभी चोरी भी नहीं छुड़ी थी, घर भरों में मक्खन चोरी कर रहे हैं, पर ब्रह्म होकर के कोई जरूरत नहीं है, सब समय परिपूर्ण है, आत्माराम है, आपका काम है, और छोटे से बच्चे शिशु में ही कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं दिखलाई, मैया को अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखला दी, और तभी घर में चोरी करते हैं किस लिए? ये प्रेम की चोरी है, ये जगत की चीजें नहीं है। जिनके घर में प्रेम नहीं उनके घर में नहीं जाते, जो उनके परिकर हैं उनके घरों में उनको आनंद देने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, ये प्रेम की चीज है। गीता संपूर्ण पढ़ने के बाद में तब ये सब समझ सकेंगे, ऐसे ये समझ में नहीं आए तभी बतला रहा। 5 वर्ष के शिशु हैं, गैया चराने जा रहे हैं। गैया चराना क्या है? गैया ये समझो कि सब श्रुतियां वेद हैं, समस्त विद्याओं की सार एक एक गाय है, उनको चरा रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं, जिसका दूध निकलेगा और यदि उसका कोई पिएगा अर्थात तो उसका श्रुतियों का जो उपदेश पालन करेगा वो पुष्ट होगा और जीवन में और परलोक में सुखी होगा, ऐसे गायों को चरा रहे हैं, मानी श्रुतियों को चरा रहे हैं। एक दिन कृष्ण भी घर में बैठे थे, या वो गाय चराने से पहले ही की बात, घर में यशोदा जी कुछ पकवान बना रही, कृष्ण पिताजी से पूछा, मैया से पूछा, मैंने कभी चल हट अभी मुझसे फुर्सत नहीं है, जाओ पिताजी के पास में खेलो, बलदेव जी के साथ में खेलो। कृष्ण वहां से लौट आए और पिताजी की गोदी में बैठ गए और पिताजी की ठोटी पकड़ करके कहने लगे, पिताजी आज मैया क्या कर रही है? तो रसोई बना रही है, तो साधारण तो रसोई नहीं मालूम होती है, आज तो बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मिठाई और लड्डू बन रही है, ये किस लिए बन रही है? मेरे लिए, मेरा जन्मदिवस आज है, नहीं बेटा तेरा जन्मदिवस, तो ये किस लिए बन रहे? छोटी छोटी बातों में कृष्ण का इतना बड़ा ऊंचा उपदेश है, लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, बड़े बड़े दार्शनिक लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर लोग, इन छोटी छोटी लीलाओं में ऐसी दार्शनिक चीजें भरी पड़ी, अथाह ज्ञान का भंडार इन चीजों में भरा, किंतु देखने में ऐसी लगती है बचपन की नीरी छोटी सी बातें लगती। नंद बाबा ने कहा कि आज गोवर्धन की पूजा होनी है,
इंद्र
की पूजा होनी है, तो इसलिए आज इंद्र को ये सब उपहार चढ़ाए जाएंगे। उसने कहा जैसे इंद्र कौन है? तो बेटा ये देवताओं के राजा हैं, जितने देवता हैं कितने करोड़ समस्त देवताओं को कंट्रोल करते हैं ये, इन्हीं के वजह से पानी बरसता है, हवा चलती है, पृथ्वी में फसल पैदा होती है, नहीं तो हम लोग कुछ खा नहीं सकते थे, फसल पैदा नहीं होती यदि वर्षा नहीं होती, इसे पेड़ पौधे उगते हैं, इसलिए हमारे पूज्य हैं, आज से नहीं हमारे पुरखों ने इनकी पूजा की है, इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे और इनको भोग देंगे। कृष्ण ने कहा जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पर वर्षा नहीं होती, ये दिखला रहे हैं जैसे इंद्र वर्षा करने वाला नहीं है, कौन है? मैं चराचर विश्व ब्रह्मांड का पालन करने वाला मैं हूं। इसलिए कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, मैं समस्त कारणों का कारण हूं। ऊपर से मालूम पड़ता है कि मैया बच्चा दे रही है, बच्चा कहाँ से आ रहा है? मैया देती है तो बहुत से लड़कियों को, माताओं को, बहुत सी स्त्रियों को बेटा ही नहीं है, क्यों नहीं पैदा कर लेती? पिता कहेगा जब मैं देने वाला हूँ तो पिता कहते हैं जैसे महाराज जी हमको चार बेटियाँ हो गई अब बेटा नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्यों नहीं बेटा दे देते? वही ऐसा मालूम होता है ये फसल देती है ये बीज, किंतु बीज में फसल देने की शक्ति कहाँ से आई? मैया के गर्भ में जिसको बच्चा होता है, जिसको बच्चा होना होता है उसी के स्तन में दूध आता है, दूसरों को क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उतर आता? खाते तो हैं क्या? गाय खाती है पुआल घास और हो जाता है दूध, ये कैसे, ये कौन बनाता है, कौन वैज्ञानिक जाकर के वहाँ पर बनाता है? इसलिए कृष्ण ये दिखला रहे हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है सबका कंट्रोल मैं करता हूँ, मेरी इच्छा के विपरीत इंद्र न तो कुछ कर सकते हैं, किंतु ध्यान हो जाता है करने वाला कौन है, मैं। इंद्र को अभिमान है, आज अभिमान हो गया है कि मैं ही वर्षा देने वाला हूँ और जीव का जितना पूजा होता है वो पूजा का ग्रहण करने वाला मैं हूँ। जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री यदि समझ ले ये भारत का भाग्य विधाता मैं हूँ, अब मुझसे और कोई बड़ा नहीं है, तो ये अभिमान मात्र है। राष्ट्रपति के हाथ में भी कुछ नहीं, राष्ट्रपति भी बदलते रहते हैं, कहो जिस प्रजाएं मिल करके उनको बनाती हैं ये भी गलत, तो अपने इच्छा अनुसार किसी को क्यों नहीं बना लेते? इन्हें संसार चक्र को चलाने वाले जो प्रभु हैं ऐसा समझ लिया जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं उनसे ये जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती है वहाँ पर वर्षा कैसे होती है, पौधे कैसे उगते हैं, फसल कैसे पैदा होती है, वहाँ के लोग कैसे जीवित रहते हैं? तो ये निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं, तो क्या करना चाहिए? अरे पासी में हमारे गोवर्धन है, गो माने गोपी, गो माने गो, गो माने गाय, गो माने ग्वाला, गो माने बेर, गो माने ज्ञान, ये सब का जो वर्धन करने वाले साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तुम लोग इनकी पूजा नहीं कर करके इंद्र की पूजा कर रहे हो, मेरी इसमें सम्मति नहीं है, मेरी सम्मति इसमें है कि गोवर्धन की पूजा, इसलिए इनका नाम ही है गोवर्धन, ज्ञानवर्धन, गो माने ज्ञान भी होता है, गो माने वेद, गो माने
पृथ्वी,
गोपी, गो माने
गाय,
गो माने बछड़े, गोवत्स, सभी उसका, ये सबको देने वाले ये गिरिराज जी वहाँ पर उपस्थित हैं और तुम लोग इनकी पूजा नहीं करते, क्यों कर रहे हैं? कहते गोवर्धन हमारा अंश है, गोवर्धन ही मैं ही हूँ। वो तो गोवर्धन तो बड़े बड़े गिरिराज हैं, एक तीन का है उसमें भी वो कृष्ण शक्ति दे दें तो विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण सब कुछ कर सकता है, यदि ना कुछ अपनी इच्छा से कर दें स अकामयत बस जगत हो गया, स ऐखत उसने इच्छा की लेक विश्व वर्ल्ड की बस जगत हो गया, ऐसे सर्वशक्तिमान है। इसलिए कहते हैं ये गोवर्धन की पूजा, देखो गोवर्धन हमारे लिए कितने झील हैं, मानस गंगा है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, सुरभि कुंड है, ऐरावत कुंड है, कुंडों की कोई गिनती नहीं। आजकल बहुत से कुंड बंद हो गए हैं। पानी का भंडार अथा निर्मल स्वच्छ, उसमें कमल खिले हुए हैं। आजकल हमारे टंकियों में आता जो पानी है वो उसमें भी गंदा हो सकता है, और उसमें में काफ कितना पानी एकदम निर्मल मीठा पानी गायें पी करके जीवित रहती हैं, और उस पानी से घासें बनती हैं, उसे गाय खाती हैं। गो हमारा धन है, इसलिए गोधन, इसलिए हम लोग जीवित हैं। आज गोवर्धन नहीं रहते तो पानी नहीं मिलता, फसल नहीं होती, ठंडी हवा नहीं मिलती, जो बादलों को रोक करके बरसाएं, बादल कैसे बरसते हैं? बड़े बड़े मेघ जब पहाड़ों से टकराते हैं, गोवर्धन बहुत ऊंचे थे और वहाँ पर हरियाली रहती थी, इसलिए मेघों का आकर्षण करके वहाँ पर पानी बरसता है। यह वैज्ञानिक सत्य है, इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाए। गोवर्धन की पूजा हुई, बड़े ठाठ से पूजा हुई। कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन पर चढ़ करके एक रूप में बच्चे के रूप में रहे और सब लोगों से कहा, बाबा बाबा देखो पिताजी, और सब लोग देखो आज गोवर्धन यहाँ पर देखो प्रकट हो गए, एक दिन की पूजा से ही। और देखा क्या, विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस पर खड़े, एक रूप से बच्चे वहां पर बने रहे और दूसरे रूप से वहां पर हो गए, और ये लोग सब उनको देने लगे। लाखों कोटि कोटि गोप लोग गाड़ियों में और छकड़ों में भर करके जो चीजें लाए थे सब उनको परस्त हुए, और वो दोनों हाथों से लंबे हाथों से क्षण मात्र में सबको खा लिया, और वहीं से मानस गंगा का पानी खींचा और वो सब पानी उनके मुख में चला गया। लोगों ने देखा तो अद्भुत, तो ऐसा तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं, और कह रहे आनो रे और ले आओ, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया आनो अन्यो, और साक्षी है अभी भी अन्नकूट वहां पर होता है, ये परम ऐतिहासिक सत्य भी है। उन्होंने कहा परम ब्रूही जो जो चाहे वो मांगो, किसी ने मैंने सब लोगों ने बस यही मांगा, हमारा कृष्ण का कल्याण हो, कृष्ण सुखी रहे, अपने बेटों के लिए अपने लिए किसी लिए कुछ भी नहीं मांगा। बस सभी लोगों ने कहा गिरिराज गोवर्धन यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको क्या दीजिए, हमारा कृष्ण फला रहे, वो सुखी रहे, इसकी आयु बढ़े, इस पर बड़े बड़े असुरों के आक्रमण हो रहे हैं, ये सुख और शांति से और कोई दूसरा पद नहीं। कृष्ण ने कहा जैसे अब तो ये बड़े प्रसन्न हो गए और मांग रहे हैं, देखो तो आज तक इंद्र ने कभी रूप दिखलाया, कभी दर्शन दिया और वर दिया तो नहीं, तो ठीक है तुम्हारी पूजा ठीक है। कृष्ण ने हाथ जोड़ करके अपने दूसरे स्वरूप को बोले, आप प्रसन्न हो जाइए, अब हमारा जो कुछ था हमने निवेदन कर दिया, अब हमारे पास में कुछ नहीं, अब अपने से आप प्रसन्न हो गए, बस मुस्कुरा दिया उन पर ध्यान हो गए। इसके बाद में कृष्ण ने जितने वहां पर लोग थे सबको लेकर कहे चलो परिक्रमा चलेंगे गोवर्धन की परिक्रमा, हजारों लाख लोगों के साथ में, बच्चों को गाड़ियों और चक्रों में बैठा दिया, वृद्धों को गाड़ियों में बैठा दिया, और स्वयं मालपुआ खाते हुए दूसरों को खिलाते हुए बड़े आनंद से जय गिरिराज धरण की जय,
गिरिराज गोवर्धन की जय।
उनका अनिष्ट इंद्र ने देखा जी हमारा बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने कहा जैसा अच्छा ठीक है, बड़ी वेग से वहां पर पानी बरसना आरंभ किया, मूसलाधार पानी बरसना मोटा मोटा धार से, और कुछ दिनों के बाद में घंटों में सब ब्रज एकदम डूब गया, कहीं आने जाने का पथ नहीं रहा। उस समय में कृष्ण ने गोवराज गोवर्धन को अपने हाथों में उठा लिया, लोगों ने समझा नंद महाराज जी की उपासना से ये प्रसन्न होकर के सबकी रक्षा के लिए इसके हाथ पर चढ़ाए, कृष्ण तो अभी छोटा सा बच्चा है ये क्या उठाएगा, बच्चों ने अपनी लठिया अड़ा दी। उन्होंने कहा हमने गोवर्धन को धारण किया है, हमारा सखा क्या कर सकता है, ऐसी उनकी लीला, और उसी में हंस रहे हैं, और जो गोपियां हैं जो छोटी सी बच्चियां भी हैं वो सब निकट में आकर के कृष्ण की छत्र छाया में वहां पर खड़ी हो गई, प्रेम की वर्षा करने लगे कृष्ण। इंद्र 7 दिनों तक वर्षा करने पर जब था नहीं पाया और देखा जे कुछ नहीं हुआ तो उनके चरण में शरणागत हो गया, अजय तुम हमको भूल गया था, कृष्ण ने कहा जाओ गैया माता को सामने लेकर के आया, इसलिए तुमको छोड़ देता हूँ, नहीं तो अच्छी तरह से दंड दे देता। दंड क्या, उनको इंद्र पद से हटा करके दूसरे किसी जीव को इंद्र पद पर अधिष्ठित कर सकते थे, नरक दे देते, बहुत से उनको यंत्रणा दे। कैसे जानो, गाय की शरण में होकर क्या है हमारे पास में, क्षमा की भिक्षा कर रहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ दिया। आइंदे से कभी यह ना आने पाए कि मैं ये वर्षा का मालिक हूँ या पृथ्वी का मालिक हूँ या किसी कुछ चीज़ को देने वाला हूँ, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसे किसी भी देवता के विषय में नहीं ऐसा ही कहा जा सकता। ये तो ऐसा ही उदाहरण दिया, और सबको भी, ब्रह्मा को, शंकर जी को, और जितने भी समुद्र के पानी के वरुण को, जम को, सबको एकदम छकाया कृष्ण, और उसी छोटे से रूप में उनको नहीं समझ सके। इसलिए समस्त आराधनाओं को छोड़ करके कृष्ण के शरणागत होकर के उनकी आराधना करनी चाहिए। जो लोग इनकी शिक्षाओं को नहीं मानते उनका धन अनिवार्य है, अकेले ही नहीं जैसे रावण का हुआ। इसलिए दुर्बुद्धि न जगे, सात्विक चीजों का आहार करो, सात्विक बातचीत करो, दूसरे का हानि मत करो, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, दूसरों का उपकार करने की चेष्टा करो। और ये सब गुण होते हुए यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो सब बेकार हैं, इस चीज को भी समझो। और यदि कृष्ण का भजन करते हैं तो ये सब गुणों का कुछ मूल्य है। इसलिए प्रारंभ से आरंभ, आहार से, सत्व शुद्धि यहां से आरंभ करो। रावण को देखा ना, जहां पर कुछ वैभव हो जाता है तो चित्त भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये नहीं होने पाए। जहां कुछ हमारे दादा परदादा गरीब थे, हमारे पिताजी ने बहुत रुपया पैसा कमाया, अब उनके बेटे ये नहीं समझती ये कैसे रुपया आया, नहीं समझते, पानी की तरफ में आएंगे, कैसे बहाएंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, स्त्रियों के फेर में पड़ जाएंगे, गंदी स्त्रियों के फेर में पड़ जाएंगे, गंदी सोसाइटी में पड़ जाएंगे, और अंट संट रूप में ये सब चीज़ों को बर्बाद करेंगे। कितने परिश्रम से ये आया था ये नहीं समझते, यदि वो करके यदि खर्च करें तब तो मैं समझता। इसलिए कभी कभी रुपया बहका देता है हमें वैभव में, हमारे स्वभाव से चुत कर देता है, इसलिए जरा ठीक से रख चलना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका बर्बाद नहीं होगा, जो मत, जो शराब पीते हैं, जरा संधि इत्यादि का देखो, प्राचीन काल से देखो, उनके कुबेर के पुत्र, कुबेर बड़े धनी थे ना, उनके दो पुत्र हैं कौन,
नलकुबर
मणिग्रीव, बड़े उच्च कोटि के वंश में जन्म लिए, उनके पिताजी जो कुबेर हैं उनसे शंकर जी की बड़ी दोस्ती है, और धन के कुबेर हैं, उनका नाम ही है कुबेर, उनके बेटे कैसे हुए उनको पता नहीं, ये धन कहाँ से आया, भक्ति से इन्होंने पाया, और शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गंदी स्त्रियों के सोहबत में रहने लगे, उनकी क्या दुर्दशा हुई, पेड़ बनना पड़ा। इसलिए इसका फल ऐसा नहीं होगा ऐसा मत समझेंगे। एक सूरत राजा थे, सूरत राजा ने लाखों यज्ञ किए, और उन यज्ञों में पशुओं की बलि दी, उसका नतीजा क्या हुआ, जब उनका जब मृत्यु होने लगी तो उनके आंखों के सामने में वो पशु आए, जिन जिन लोगों की तुमने हत्या की है हम इसका बदला लेंगे। मांस माने क्या होता है, मांस खाद, मांग, हमने जिसको खाया है उस वो हमको खाएंगे, रिएक्शन जरूर होगा कर्मों का। इसलिए भगवत भक्ति से पहले इन चीजों को सुधार कर लेना चाहिए, जीवन को सुखी करने के लिए। उनको देखा सभी अस्त्र देकर के आ रहे हैं मारने के, काजे जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि कोटि कोटि प्राणियों की जो बलि दी है हम भी तुमको कोटि कोटि बार जन्म लो और मारेंगे, बस कांप करके गिर गए। तो नाथ जी की कुछ ऐसी कृपा भई, पानी छिटका उनको जगाया, काजे अब मैं क्या करूं, कोई उपाय है बचने का, तो कोई उपाय नहीं है, केवल यही उपाय है कृष्ण के शरणागत हो, और आज से कान पकड़ो जी ये सब काम ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कृष्ण का शरणागत वो हुए, और कान पकड़ा जी भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, सात्विक रूप में रह करके कृष्ण का हम भजन करेंगे, बस सब। इसलिए इन चीजों को हमें याद रखनी चाहिए। गीता में जो सूत्र रूप में लिखे हैं सभी चीज, भागवत में उसको व्याख्या के साथ में अच्छी तरह से बतलाया गया है। इसलिए गीता को कहा गया है समस्त उपनिषदों का सार, और भागवत को क्या कहा गया, निगम कल्प तरूर गलितंग फलम सुखमुखात अमृत संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम बहु रहो रसिका भूल। जब गीता के अनुसार में हमारा जीवन का गठन हो जाए तब भागवत आरंभ होगा, ऐसे हम लोग उसको नहीं आरंभ कर सकते। इसलिए पहले गीता और इसके बाद में भागवत में प्रेम की व्याख्या की गई है, बिना प्रेम का एक जीवन अधूरा है, इस चीज को समझो। गीता में नहीं, भागवत में प्रेम का संदेश है। धर्म हमारा क्या है? प्रेम ही हमारा जीवन है, प्रेम ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा सर्वस्व है। यदि जगत में से या हमारे जीवन से प्रेम को निकाल दिया जाए तो जीवन शून्य हो जाएगा। आज जगत की समस्या क्या है? अर्थ की कमी नहीं है, अर्थ प्रचुर है। आज से पहले हमने 50 वर्ष जो देखा था उस समय एक रुपये का मूल्य कितना था और आज एक रुपये का मूल्य कितना है। आजकल ऐसे लोग हैं जिनके पास में काफी पैसा है, जो मजदूरी भी करते हैं, काफी पैसा है, सब कुछ है, किंतु अशांति क्यों? आत्मा के गुण हैं वो मर चुके हैं या मर रहे हैं, और ये शरीर के जो चीजें हैं, भूख है वो बढ़ रही, स्वार्थ बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रीति नहीं। जब भगवान के प्रति ये प्रीति होती है मूल में, तो सबके प्रति अपने आप प्रीति होती है। इसलिए इस जगत में केवल प्रीति है,